नमस्कार किया। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं श्रीमद् भागवतम क्लास में। उपस्थित भक्तों का भी और अनुपस्थित भक्तों का भी, जो किसी कारणवश नहीं आ पाए या जो आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से भी लोग देख रहे थे, तो उनका भी स्वागत है। और वो लोग जिन्हें मनुष्य देह प्राप्त नहीं हुआ, हो सकता है यहां पर उपस्थित हों प्रेत आत्माओं के रूप में, और उनका भी स्वागत है। कहीं वो रुक ना जाए। और वो जीवात्माएं जो हम देख नहीं पाते हैं, सबका स्वागत है। तो कृष्ण कीर्तन, कृष्ण का जो गुणगान है, वो सभी के लिए फायदेमंद है। इसलिए वो जीवात्माएं जो यहां भटक रही हैं, जिन्हें शरीर नहीं मिला या इंसेक्ट्स के रूप में भी हैं, तो उनको भी जो है यहां पर देह त्यागने का या हरिनाम सुनने का पूरा लाभ पहुंचेगा। शास्त्रों में कहा गया है जिन जीवों को जिन्हें मनुष्य देह नहीं मिला, उनको अगर हरिनाम वो भी सुन लेते हैं तो उनकी भी गति जो है अच्छी हो जाती है। तो मनुष्यों का कहना ही क्या जो ज्ञान में रहकर इन सब कार्यों को करते हैं। तो आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप सब लोग अपना समय निकालकर श्रीमद् भागवतम कक्षा के लिए आए। तो आज के श्लोक में जो है थोड़ी सी जो भूमिका है वो बता देते हैं। जो ये अध्याय चल रहा है, इस अध्याय का नाम है इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। तो हम लोगों ने कई बार कथाओं में भी सुना है, कई इस प्रकार के केसेस रहे हैं जहां पर कई बार गुरु का अपमान हुआ है या अपने से सीनियर का अपमान हुआ है, वैष्णव अपराध इत्यादि हुआ है, तो उसका काफी हर्जाना भुगतना पड़ता है करने वाले को। तो सभा में इंद्र जो है, वास्तव में इंद्र एक बहुत ऊंची पोस्ट है और सारे देवताओं के जो है राजा है इंद्र, और सारा कंट्रोल लगभग उनके पास रहता है क्योंकि वो मुख्य राजा के रूप में रहते हैं। लेकिन कुछ समय अधिक रहने पर किसी भी पोस्ट के साथ या सेवा के साथ ये जीवात्मा की एक अलग से कंडीशनिंग है कि वो उससे आसक्त हो जाता है, और आसक्त होने के कारण मान सम्मान की जो इच्छा रहती है वो बढ़ जाती है, और उसके बाद पूजा लाभ प्रतिष्ठा इत्यादि मिलता है उस व्यक्ति को। तो फिर धीरे धीरे उसके अंदर ये भावना आने लग जाती है कि वो अब उससे अधिक बढ़कर कोई नहीं है, और ऐसी भावना आने से जो है उसके अंदर जो गुण हैं उसके, वो धीरे धीरे वो जो क्वालिटीज जो उसने शुरू में अर्जित की थी धीरे धीरे सब क्या होने लग जाती हैं, कवर होने लग जाती हैं अज्ञानता से। ये अज्ञानता का लक्षण क्या है कि व्यक्ति अपने आप को ये देह माने, और देह मानना ही अज्ञानता है, और देह के साथ संबंधित उपाधियां तो ये अज्ञानता का और अधिक क्या है, एक्सपेंशन है, उसका विस्तार है अज्ञानता का। और फिर उपाधि के साथ साथ नाना प्रकार के जो उसके अवगुण हैं, अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, ये व्यक्ति के अंदर और आ जाता है। तो इस प्रकार अच्छा भला व्यक्ति जो ठीक प्रकार से गुणों के साथ जब भक्ति करता है या और दूसरे कार्य करता है, तो जब उसको कुछ उपाधि मिलती है तो उसके साथ वो क्या हो जाता है, आसक्त हो जाता है, और इस आसक्ति के कारण उनको काफी नुकसान भी पहुंचता है। उनकी जो भक्ति में उन्नति है वो उस स्पीड में नहीं हो पाती, या उस तरफ नहीं पहुंच पाते जहां उन्हें पहुंचना है, किसी और ही जगह चली जाती है। तो इंद्र भी जो है अपने आसपास काफी लोगों को जो उनके राज्य में रहते हैं, वहां पर एक बार क्या कथा में पता चलता है कि बृहस्पति पहुंच गए, और बृहस्पति जो है वो उनके गुरु हैं, देवताओं के, इंद्र के भी गुरु हैं, लेकिन अहंकारवश, घमंडवश इंद्र ने उठना नहीं वाजिब समझा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बृहस्पति को ये ठीक नहीं लगा और वो वहां से चले गए। जब वो चले गए तो उसके बाद इंद्र को लगा कि बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। तो इस प्रकार देवताओं को छोड़कर बृहस्पति अदृश्य हो गए, और इंद्र ने जो है पश्चाताप करना शुरू किया कि मैं जो हूं बहुत ही, जो शब्द होते हैं, डिग्रेडेड हूं, मुझे बिल्कुल अकल नहीं है, कि मैंने अपने गुरु के आने पर भी उनका सम्मान नहीं किया। और अगर कोई ये बोले, कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, तो सबसे ज्यादा अज्ञानता में है वो व्यक्ति। इस प्रकार जब शोक कर रहे थे तो असुरों तक खबर पहुंच गई कि इस समय देवताओं की स्थिति बड़ी खराब है ना, राजा ही शोक कर रहा है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अटैक करने की, तो हमारे जो दुश्मन हैं बड़े कमजोर अवस्था में इस समय, और असुरों ने जो है देवताओं पर आक्रमण कर दिया। अच्छा, देवताओं के ऊपर आक्रमण करने से पहले बता रहे हैं कि असुरों ने भी, जो कि अपने, उनके भी गुरु होते हैं, असुरों के भी गुरु होते हैं, कौन है, शुक्राचार्य, वैसे वो इतना पालन नहीं करते, कई बार इनकी आज्ञाओं को वैसे ऑफेंड करते रहते हैं उनको, और असुरों में कोई किसी को ऑफेंड कर रहा है तो कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन क्या करा, इस बार उन्होंने अच्छे ढंग से पालन किया शुक्राचार्य जी की भी इंस्ट्रक्शन को, और बड़ी दृढ़ता के साथ पालन किया, जैसा बताया वैसा किया, और इस गुण से उनके अंदर और भी अधिक शक्ति आ गई असुरों के अंदर। देखिए, इंस्ट्रक्शन अगर एक असुर दे और एक देवता या गुरु दे, और अगर उसका अक्षरश पालन किया जाए, तो गति अर्थात मंजिल दोनों को प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के संरक्षण में है और प्रमाणिक गुरु की इंस्ट्रक्शंस का पालन कर रहा है, तो उसकी क्या गति है, उसको गुरु की कृपा मिलेगी, और उस कृपा के आधार पर वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेगा। असुर लोग या वो लोग जो पालन नहीं करते, फिर भी अगर वो किसी को अपना गुरु बना दिया, अप्रमाणिक लोगों को भी अगर गुरु बना लेते हैं और पूरी दृढ़ता से पालन करते हैं, देखा है हमने समाज में जैसे अप्रमाणिक गुरुओं की भरमार है, तो उसमें जब लोग पूर्णतः अक्षरज पालन करते हैं ऐसे गुरुओं के आदेश को, तो उनकी भी कोई ना कोई गति होती है। इसी अध्याय में बता रहे हैं कि वो गुरु भी और वो शिष्य लोग भी कहां जाते हैं, गति क्या होती है, एक जैसी, एक समान गति, अर्थात ये पूरी की पूरी टीम नारकीय जीवन व्यतीत करती है, यार नरकों का जीवन जीना पड़ता है। तो यहां पर शुक्राचार्य जी की आज्ञाओं को ठीक ढंग से पालन कर इन लोगों ने अटैक किया देवताओं पर, और खूब तीर छोड़े, और देवता लोग कहीं पैर पे तीर लगा, कहीं हाथ पे लगा, सब लहू लुहान हो गए। तो देवताओं को लगा अब तो खत्म, अब तो बड़ा मुश्किल है, तो बचने के लिए क्या करा, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम लोगों ने गलती खुद करी, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी तुमने और इंद्र ये आपकी वजह से हुआ है, तुमने जो है अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया है, ये सब उसी की वजह से हुआ कि इस समय असुर लोगों के अंदर ज्यादा शक्ति आ गई। तो इसमें एक विशेष बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति इंस्ट्रक्शन का पालन करता है तो विशेष शक्ति से प्राप्त होती है, प्योरिटी इज द फोर्स। श्रील प्रभुपाद जी ने भी जो चार सिद्धांत हमें दिए हैं तो उसमें बोला है कि प्योरिटी इज द फोर्स, हमारी जो शक्ति है वो क्या है, पवित्रता ही हमारी शक्ति है। जिस व्यक्ति के अंदर जितनी अधिक पवित्रता होगी, पवित्रता बाहरी रूप से अर्थात शारीरिक रूप से और आंतरिक रूप से पवित्रता, आंतरिक रूप से पवित्रता का ज्यादा महत्व है। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर अधिक पवित्रता है, वो नियमों का ठीक ढंग से और सही ढंग से पालन अक्षरशः पालन करता है, गुरु के आदेशों का पूरी दृढ़ता से पालन करता है, तो उस भक्त के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक शक्ति का आवेश होता है। इसलिए हम देखते हैं कि गुरु परंपरा में जितने भी लोग अपने गुरु के कहने के अनुसार चलते हैं तो उन्हें जो भी शक्ति दी जाती है और जो भी आदेश दिया जाता है उसके अंदर एम्पावरमेंट होती है, एक अलग से आवेश होता है शक्ति का, और मुश्किल से मुश्किल कार्य बहुत आसान बन जाता है। जैसे श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों के हम लोग जीवन को देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने कई लोगों को एकदम एक अलग सी इंस्ट्रक्शन दी जो कि वो सोच भी नहीं सकते थे, है ना। कौन थे जो बुक संकीर्तन पार्टी के वो थे, तमाल कृष्ण महाराज संकीर्तन पार्टी चलाते थे और काफी बसेस थी उनके पास और उसमें खूब ब्रह्मचारी रहते थे और जहां पर भी वो चले जाते थे उन बसेस को लेकर, तो आप समझ सकते हैं कि एक क्या माहौल रहता होगा कि चार बसेस पांच बसेस कहीं खड़ी हुई और उसमें से लगभग 100-150 ब्रह्मचारी उतरे किताबें लेकर और पूरी सिटी में जो है उन्होंने माया नगरी पे अटैक कर दिया या बॉम्ब फिट कराए शिला पोपाजी उसके गीता डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब अचानक, तो बहुत ज्यादा उनको ख्याति प्राप्त हो रही थी और बहुत अधिक वो कर पा रहे थे अच्छा कार्य। लेकिन प्रभुपाद जी ने अचानक उनको एक इंस्ट्रक्शन दी कि नाउ यू गो टू चाइना एंड प्रीच देयर। चाइना किसी सोचा भी नहीं था, और चाइना जैसा देश जहां पर कि जो वहां पर भी कम्युनिज्म था जिस प्रकार रशिया में था, जैसे प्रभुपाद जी को कहते रशिया में नहीं अलाउ किया था इतना उनको प्रचार करने के लिए सबके लिए, तो प्रभुपाद ने 3 दिन केवल एक भक्त के साथ बिताए, उसके साथ कृष्ण संदेश जो है उनको कृष्ण संदेश दिया और वो जो प्रभुपाद जी कहा था मैंने जो है बीज बो कर आ गया हूं, और बाद में वो ऐसा वट वृक्ष बना कि अभी तक पूरे संसार भर में जितना अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ मजबूत है या विशाल है या सबसे अधिक भक्त हैं तो वो कहां पर है, रशिया। तो इस प्रकार तमाल कृष्ण महाराज जी से कहा कि आप जाइए चाइना में और वहां जाके प्रचार कीजिए, वो गए और इस प्रकार वहां पर भी सक्सेस मिली उनके प्रचार से। आज आप वहां भी देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में भक्त हैं, चाइना गवर्नमेंट ने ही चाइनीज लैंग्वेज में भगवत गीता जो है प्रिंट कर दी, और अभी खबर मिली थी कि अब जो है श्रीमद् भागवतम पे काम चल रहा है और वो भी चाइनीज लैंग्वेज में, अब श्रील प्रभुपाद जी की भागवतम जो है छपने वाली है बहुत। तो अब सोच कर देखिए गवर्नमेंट छाप रही है है ना। तो अगर गवर्नमेंट किसी चीज को करे ये काम, हमारे देश में हमारी गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती है, ये तो छुपाते के ग्रंथों, लेकिन ये लोग सामने नहीं आ सकते, सामने ऐसा नहीं कर सकते, धर्म निरपेक्ष की आड़ में किसी भी धर्म को पालन नहीं कर पाते। लेकिन चाइना जैसे देश में जहां पर कि सब कुछ खाया जाता है, नियम को कुछ पता ही नहीं किसी को, लेकिन वहां पर भी अब जो है भक्ति के जो है लहर दौड़ पड़ी है। अभी जब मायापुर धाम में थे तो चाइनीज संख्या मतलब भक्तों की संख्या वहां बढ़ती जा रही है। अब जो है पहले जब हम लोग मायापुर जाते थे तो वहां पर बंगाली लोग ज्यादा दिखते थे, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी, फेस्टिवल्स में जाएं तो वहां पर इंटरनेशनल डिवोटीज की संख्या इतनी ज्यादा होती थी कि अपने जैसे डिवोटीज देखना बड़ा मुश्किल होते थे। अभी क्या है कि उन्हीं भीड़ों में, उसी भीड़ में अब कम आंखें खुली हुई लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, और अलग अलग धुन में अलग अलग तरह से हरि नाम सुनाई जाता है, सुनाई देता है, हरे कृष्ण करके भी, और हरे किन्ना भी, हरे राम राम भी बोलते हैं। लेकिन भगवान को पसंद है, हमें इतना अच्छा लगता है जब कोई दूसरा मंत्र बोले तो भगवान को अपना नाम अपना मंत्र तोतली भाषा में तो और भी अच्छा लगता है। तो कृपा हो रही है उन सबके ऊपर। तो इस प्रकार हम जान देख रहे हैं कि जो भी लोग गुरु के शब्दों का अक्षरज पालन करने का प्रयास करता है, लाइफ एंड सोल, उन इंस्ट्रक्शंस को मानता है, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक जगत में उसकी उन्नति होती है। यही एक कारण है भक्ति में आगे बढ़ने का। कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि प्रभु जी हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें, हम क्या कौन सी किताब पढ़ें, हमारा मन नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा। लेकिन इन सब चीजों का जो आधार है वो है गुरु की इंस्ट्रक्शंस। अगर कोई व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन अक्षरज करता है, ठीक प्रकार से करता है, दृढ़ता के साथ करता है, तो निश्चित रूप से सफलता उसके चरण को चूमेगी। कहते हैं जिस प्रकार एक बार जब शबरी को कहा गया कि तुम जो है इंतजार करो, एक दिन राम तुम्हारे यहां आएंगे, कोई डेट नहीं बताया, कोई टाइम नहीं बताया, कोई महीना नहीं बताया, कोई साल नहीं बताया, लेकिन शबरी की दृढ़ता देखिए गुरु के वाक्यों पर कि उन्होंने क्या किया। वो रोज वृक्ष से फूलों को तोड़ती थी, फलों को तोड़ती थी, और थाली सजाती थी कि आज भगवान राम आएंगे। और बताते हैं कि अपने बालों से ही वो झाड़ू मारती थी, पूरा साफ करके रखती थी, और कोई उसी को जाने नहीं देती थी, वहां से हटो हटो हटो, भगवान राम ने आना है, भगवान राम ने आना है। इस प्रकार की दृढ़ता शबरी के अंदर। हम लोगों को कोई व्यक्ति बोल दे कि आप इंतजार करो, कितनी देर करना होगा जी, है ना। कोई व्यक्ति अगर गुरुदेव से मिलने जाए तो वहीं उसकी पेशेंस खत्म हो जाती है, कब तक चलेगी मीटिंग, अंदर क्या हो रहा है, अंदर से बताओ ना, मैं आया हूं, बोलो मैं एक घंटे से आया हूं, है ना। तो इस प्रकार इम्पेशेंट होकर हम लोग जो हैं कई बारी ऑफेंसेस भी करते थे। तो शबरी ने देखो भगवान को प्राप्त किया, भगवान को आना पड़ा। किसी के भी अंदर अगर गुरु की शब्दों को पालन करने का दृढ़ता है तो भगवान तो भक्तों के पराधीन रहते हैं, उनके पास। जिस प्रकार हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि घोड़ों के लगाम को टाइट करना चाहिए, नहीं इंटेलिजेंस के साथ, तब घोड़े ठीक चलेंगे, उसी तरह भगवान की लगाम भक्तों के पास होती है। भगवान पराधीन है, अधीन है भक्तों के, भक्तों की इच्छाओं के। लेकिन कौन से भक्तों की इच्छाओं के? उन भक्तों की इच्छाओं के, जिन भक्तों की इच्छा, जिन भक्तों का चित्त गुरु से या कृष्ण के भाव को जानता है। जीते थे कौरिया के, जिन भक्तों का, जिन साधकों का, जिन लोगों को मालूम है गुरु के मूड, कृष्ण के मूड का, उनका अक्षरज पालन करते हैं, तो भक्त ऐसे भक्त जो हैं, भगवान ऐसे भक्तों की कहना मानते हैं। अब सोचकर देखिए, प्रहलाद महाराज ने से पूछा हिरण्यकशिपु ने, बताओ कहां है तुम्हारे भगवान, कहां है वो विष्णु। अब प्रहलाद महाराज ने कहा हर जगह व्याप्त है, तो हर जगह व्याप्त है। अब मान लीजिए जैसे हम कोई ड्रामा कह रहे हैं, उस ड्रामा में कुछ खंभे बना दें और नरसिंह भगवान को उस खंभे के पीछे छुपा दें, और प्रहलाद महाराज को बोले हिरण्यकशिपु बताओ कहां है तुम्हारा विष्णु, और प्रहलाद महाराज कंफ्यूज हो रहे कौन सा खंभा बताना था। मेरे ख्याल से ये अच्छा नरसिंह का कौन सी जगह हाथ खड़ा करी, भाग के पीछे से उतर, नहीं ये नहीं था वो खंभा था। नरसिंह भगवान को उसके पीछे जाने में, समझ रहे हैं, एक ड्रामा में भी जहां पर वो हाथ करेंगे उतर ही जाना पड़ेगा नरसिंह भगवान को प्रकट होने के लिए, कि भैया पता चले बोला यहां से, और हिरण्यकश्यप इधर खंभे को तोड़ने के पता चले पीछे खंभे से निकला, हम नहीं खेल रही ड्रामा, आपने बोला कुछ और, दिखाया कुछ और, कहीं से हो रहा है। तो प्रहलाद ने कहा इस खंभे में भी उपस्थित है भगवान, तो भगवान को वहां से प्रकट होना था। कुछ और भी बोलते तो वहां से प्रकट होते। वो कहते हैं आपके हृदय में भगवान, तो हृदय से फाड़ कर बाहर निकल आते। भगवान को एंटर करने के लिए हमारी तरह थोड़ी कोई दरवाजा चाहिए, ये कॉस्ट्यूम चाहिए, ये मेकअप चाहिए, टाइमिंग चाहिए, नहीं। एक शुद्ध भक्त भगवान को जहां, क्योंकि वो हर जगह भगवान का दर्शन करता है, इसलिए वो भक्तों में भी, हर जीवात्मा में भी उसके हृदय में परमात्मा का दर्शन करता है। इसलिए भक्त लोग किसी को ऑफेंड नहीं करते। उत्तम अधिकारी जो हैं वो हरेक के हृदय में परमात्मा को देखते हैं। इतना ही नहीं, वो इन जड़ वस्तुओं में भी परमात्मा को देखते हैं। ये हम लोगों के लिए जड़ है, लेकिन शुद्ध भक्तों के लिए ये भी चिन्मय है। तो दृष्टि का फर्क पड़ जाता है। और दृष्टि इस प्रकार कैसे बनती है, जब व्यक्ति इस प्रकार साधना भक्ति का पालन करते हुए, और उससे कोई हेतु नहीं होना चाहिए। जैसे कई बार होता है कि कई बार जब हम कुछ भक्ति करते हैं, प्रयास करते हैं साधना करने का, तो जब कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, कोई समस्या आती है, तो इमीडिएटली एक्सचेंज कर लेते हैं उसको। एक्सचेंज ऑफर में वो सारी भक्ति एक्सचेंज करके कुछ मांग लेते हैं। ये लोग होता है ना, इसके बाद जैसे घर में किसी लोगों के कई पुराने कपड़े हैं, कई चीजें हैं, तो एक आवाज आती है माता जी की कोई बाहर से कि पुराने कपड़े दे दो, नए बर्तन ले लो, एक्सचेंज ऑफर। या दीपावली एक्सचेंज ऑफर होता है कि आप जो ये ले लीजिए, पुराना स्कूटर दीजिए और नया स्कूटर ले लीजिए, पुरानी गाड़ी दीजिए, नई गाड़ी ले लीजिए। उसी तरह भक्त लोग मंदिर में आते हैं, थोड़ी बहुत साधना की होती है, कुछ नाम लिया होता है, और जहां जैसे कोई कष्ट आता है तो क्या कहते हैं, भगवान मैंने जितने भी किए कब से कर रही हूं ना, मैं कब से कर रहा हूं, तो जितने भी किया है मैंने वो सब ले लो, लेकिन ये जो प्रॉब्लम इस समय आई है मेरे को, ये ठीक कर दो। भक्त लोग भी बड़े भावुक हैं, भक्त लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार। अगर आप कि हृदय में कोई इच्छा भी है और नहीं भी है, तो भी हमें किसकी शरण में जाना चाहिए, कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए अगर आज इच्छा है भी, और हो सकता है इच्छा हरेक के अंदर तो होती है, लेकिन जब वो आएगा मंदिर में दर्शन करेगा और भगवान श्री कृष्ण की शरणागति को ग्रहण करेगा, उनको नमस्कार करेगा, उनमें अपना मन लगाएगा, प्रेयर करेगा तो मन तो लगाएगा ना, उनकी पूजा करेगा इत्यादि, तो इन सब चीजों से ये भक्ति का ही एक अंग है। तो क्या करना पड़ेगा, उनको आने से, कथा इत्यादि सुनने से, हरिनाम इत्यादि लेने से, धीरे धीरे उनकी जो इच्छाएं हैं वो क्या होंगी, समाप्त होने लगेगी, और वो जो बचेंगी अर्थात आध्यात्मिक इच्छा के रूप में प्रबल हो जाएगी। तो अहेतु के, जिन लोगों ने अपना किसी बिना हेतु के भगवान की भक्ति करी है, ये जो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी उन्नति या उनकी एडवांसमेंट, उनकी प्रगति बहुत तेजी से होती है। तो जितना जल्दी भक्त भौतिक इच्छा शून्य हो जाए, इच्छा शून्य तो नहीं हो सकते, इच्छाएं तो सदैव रहेंगी, लेकिन भौतिक इच्छा शून्य हो जाए, अर्थात कि संसार की जो, इस संसार में जो कुछ समय के लिए जो प्रोडक्ट हमें देखते हैं, चाहे वो मनुष्य रूप में हो, चाहे वो धन रूप में हो, चाहे इन पांच तत्वों से बना हुआ कोई और भी चीज हो, है ना, तो इन इच्छाओं को क्या करना चाहिए, धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए। और आध्यात्मिक इच्छा कर सकते हैं, भक्तों के संग की इच्छा कर सकते हैं, कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर प्रसाद बनाने की इच्छा कर सकते हैं। तो इस प्रकार की इच्छाओं से क्या होगा, शिला प्रभुपाद जी की इच्छा को पूर्ण करने की इच्छा को कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है इच्छा हम लोग अगर भगवान को केंद्रित करके करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। तो ये सब बताने का क्या फायदा है, मतलब है कि जब भक्त लोग इस प्रकार गुरु की वाणी पर पूरी दृढ़ता के साथ उसका पालन करते हैं, तो उसके अंदर शक्ति का आवेश आता है, और वो बड़े से बड़े कामों को, जो कि असंभव जैसे लगते हैं, उनको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए कई बार देखेंगे जो भक्त लोग बड़े बड़े प्रचारक हैं, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं, आप उनको देखना, क्योंकि वो अपने गुरु के आज्ञाओं को बहुत आसानी से कर पा रहे हैं पालन उसका, इसलिए उनकी ख्याति, उनका फेम, उनके पीछे भागता है, वो तिरस्कार करता है ऐसे फेम का, हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें मालूम है कि हम कुछ नहीं कर रहे। ये तो जिस प्रकार किसी रजोगुणी व्यक्ति को पाप पूर्ण कार्य में लगाया जाता है, किसके द्वारा? रजोगुण के द्वारा। काम एष क्रोध एष, अर्जुन कहते हैं बलदिव नियोजित, भगवान मैं करना नहीं चाहता लेकिन फिर भी बलपूर्वक लगाया जाता है। उसी तरह जो सात्विक व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त है, भगवान की शक्ति का आवेश, गुरु की शक्ति का आवेश उस व्यक्ति को उस धरातल पर ले आता है कि जहां पर कि वो उससे ये सारी भक्ति जैसे कार्य अपने आप ही एग्जीक्यूट होने लग जाते हैं, उसको करने के लिए अपने आप ही उसके अंदर शक्ति का आवेश हो जाता है। उसके हृदय में जो परमात्मा है वो उसके सारी इच्छाओं को, जो कि स्पिरिचुअल इच्छाएं हैं, और भक्त तो अच्छी स्पिरिचुअल इच्छाएं करते हैं, तो उनके थ्रू जो है वो सारा काम करवाते हैं। जिन लोगों के अंदर, जिन शिष्यों के अंदर अभी अपनी भी बहुत इच्छाएं हैं, भौतिक भी बहुत इच्छाएं हैं, और आध्यात्मिक इच्छा भी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्नति भी करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रगति भी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब तक वो ब्लॉक्स हैं तब तक धीरे धीरे एडवांसमेंट होगा, और जिनके वो ब्लॉक्स खत्म हो गए हैं वहां से शक्ति का फ्लो बहुत तेज रहेगा। समझ पा रहे हैं? जिस प्रकार आप घर में देखते हैं कई बार नाली जाम हो जाती है, तो क्यों जाम होती है? क्योंकि काफी कचरा बीच में आ गया, आप पानी डालते रहते नहीं जाते, जाम हो जाता है। क्या कारण है? कि बीच में नाना प्रकार की जो चीजें पहले डली थी, इच्छाएं जो गई थी, पॉलिथीन चला गया था, कूड़ा चला गया, वो सब जाम हो गया, उसकी वजह से फ्लो रुक गया। उसी प्रकार जब हमारे हृदय में इतने सारे ब्लॉकेज रहेंगे, किस रूप में? नाना प्रकार की इच्छाओं की, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की, मान सम्मान इत्यादि पाने की, नंबर वन आने की, तो उस ब्लॉकेज की वजह से जो मर्सी का फ्लो है, भगवान की कृपा का जो फ्लो है, वो प्रवाहित नहीं हो पाएगा। तब जाके चाहिए क्या? भक्तों का संग अधिक, शुद्ध भक्तों की कृपा, प्रार्थना इत्यादि के प्रेशर से उस नाली को साफ किया जाएगा और उसके बाद कृपा का फ्लो आगे बढ़ेगा। तो जब व्यक्ति इस प्रकार गुरु के आदेशों का पालन करता है तो निश्चित रूप से वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। अब यहां पर इसी श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुमने तो एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, अपने गुरु को तो आपने नाराज कर दिया, इसलिए वो चले गए, इसलिए तुम्हारी दुर्गति हो रही है। और अब तुम क्या करो? तो उन्होंने एक उनको सजेस्ट किया कि एक ब्राह्मण है और उन ब्राह्मण के पास आप जाओ जो कि वैदिक ज्ञान में पूरी तरह से उन्नत हैं, उनके पास जाकर आप क्या करो? प्रार्थना करो और वो तुम्हारी मदद करेंगे और वो जो इंस्ट्रक्शन दें उसका पालन करो। तो उन्होंने यही किया और आप उन ब्राह्मण के पास जाकर सारे देवताओं ने प्रार्थना करी और अब उनसे कह रहे हैं क्योंकि तुम परब्रह्म से पूर्णतः परिचित हो और ब्राह्मण हो, अतः तुम सभी आश्रमों के गुरु हो। सभी आश्रमों का गुरु मतलब जो हमारे वर्ण और आश्रम जितने भी होते हैं, जो ब्राह्मण है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, परब्रह्म को जानता है, वो गुरु बनने लायक है ना? कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के निनाय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। जाति से, कास्ट एंड क्रीड से, रंग या रूप से, हाइट से, कलर से, देश से गुरु डिसाइड नहीं होते, ये सब एक्सटर्नल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो भी व्यक्ति कृष्ण को तत्व से जानता है वो व्यक्ति गुरु बनने लायक है, ठीक है ना? इसी तरह उपदेशामृत में एक श्लोक आता है, पहला श्लोक, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उदर वेगम प्रस्त वेगम, है ना? सुना आपने? छह प्रकार के वेगों की बात हो रही है कि जो व्यक्ति इन छह वेगों को कंट्रोल कर लेता है, पृथ्वी सा शिष्यात, वो पूरी पृथ्वी पे शिष्य बना सकता है। यहां पर बात कही जा रही है जो कृष्ण को तत्व से जानता है वो गुरु के समान है। तो जो व्यक्ति कृष्ण को तत्व से जानेगा, तत्व से जानने का मतलब है कि कृष्ण को पूर्णतः जानना, उनकी शक्तियों के साथ कृष्ण को जानना कि वह हर व्यक्ति के अंदर है। जो व्यक्ति कृष्ण तत्व वेता है अर्थात उसके अंदर ये जो छह गुण क्या है ये बहुत आसानी से आ जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि हम लोग कृष्ण को जानते तो हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहे। हम तो अभी कृष्ण को जिस प्रकार जानते हैं वो जानना कह सकते हैं कि फिलोसॉफिकल है कि हाँ कृष्ण हैं, बांसुरी पकड़ते हैं और राधा रानी जी साथ में हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग इतनी देर तक ही मानते कि जैसे अल्टर में भगवान है इतना मानते हैं, उसके बाद भगवान की प्रेजेंस को जब हम लोगों से डील करते हैं तो उसके अंदर फील नहीं करते हैं। घर में जो अपने घर के सदस्यों से डील करते हैं तो वहां फील नहीं करते हैं। जब कोई हमें गलत काम करना होता है हम देखते हैं कि आसपास कोई नहीं है तो हम वहां फील नहीं करते हैं कि भगवान यहां पर है। जब हम किसी पर क्रोधित होते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से द्वेष रखते हैं, तब फील नहीं करते कि इसके अंदर भी कृष्ण है। तो हमारा जो ज्ञान है वो सीमित ज्ञान है, विग्रहों तक ही सीमित है। कपिल मुनि अपनी माता देहूति को बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो विग्रहों को ही भगवान मानता है, उनकी सेवा में लगा है, जो मूर्त रूप में कृष्ण खड़े हैं, और वो व्यक्ति जो सामने गेस्ट रूप में या जो भी व्यक्ति है जो दर्शन कर रहा है भगवान से, वो डीटी से वो प्रेम कर रहा है, लेकिन जिन व्यक्तियों के हृदय में साक्षात विष्णु खड़े हैं, कृष्ण खड़े हैं, जिसका कि शरीर एक मंदिर के समान है, उस समय ईर्ष्या और द्वेष कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसी पूजा का कोई फायदा नहीं। कनिष्ठ अधिकारी समझ पाए बात, तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा। तो हम जो कृष्ण को जानते हैं वो कृष्ण की को तत्व से नहीं जानते। तत्व से जानने का मतलब ही है कि उसके अंदर फिर ये सारी क्वालिटीज अपने पर जाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार यहां कह रहे हैं कि तुम ब्राह्मण हो और तुम कृष्ण को, परब्रह्म को पूर्णता जानते हो, परिचित हो उनसे, अथा तुम सभी आश्रमों के गुरु हो, हम तुम्हें अपना गुरु तथा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे हो सकता है जो व्यक्ति ज्ञान दे रहा है या साधना भक्ति का पालन कर रहा है, अपने गुरु के आदेशों का पालन कर रहा है, ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, क्योंकि अब हर व्यक्ति के लिए तो हर जगह पर शुद्ध भक्त तो पहुंचेंगे नहीं उसको संग देने के लिए, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे कि हो सकता है कि उस व्यक्ति के अंदर कुछ कमियां भी हों, लेकिन जो ज्ञान हम दे रहे हैं, द नॉलेज वी आर गिविंग, दैट इज परफेक्ट। हो सकता है उसके अंदर कुछ इम्परफेक्शंस हों, लेकिन इस ज्ञान के अंदर कोई कमी नहीं है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं करके दे रहा, उसको तो वो एज इट इज देने का प्रयास कर रहा है, तो वो सत्य है, हमें उसका पालन करना है। लेकिन जो हमारी कंडीशनिंग है लोगों में दोष देखने की, उस दोष की चर्चा करने की और उस दोष की वजह से उसकी निंदा करने की और उसका संग ना प्राप्त करने की, है ना, ये एक समस्या बन जाती है किसी की प्रगति के लिए। मध्यम अधिकारी लोग जो भक्ति में अच्छी अवस्था रखते हैं, जो प्रचारक हैं, जो भगवान को जानते हैं, उनके नाम का प्रचार करते हैं, ऐसे भक्त लोग जो द्वेषी लोग होते हैं उनकी निंदा नहीं करते, उनके संग का क्या करते हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। किस लिए? क्योंकि जो इस प्रकार के लोगों का संग करेंगे या इस प्रकार के लोगों के बीच में बैठेंगे तो वो अपनी फिलहाल जो उसकी कंडीशनिंग है उसके कारण क्या करेगा, वो निंदा इत्यादि करेगा, तो निंदा सुनना तो ठीक नहीं है। तो ऐसे इसलिए मध्यम अधिकारी लोग ऐसे लोगों का संग नहीं करते। लेकिन उत्तम अधिकारी जो हैं, जो कि सभी के अंदर परमात्मा को देखते हैं, उनका किसी से कोई द्वेष नहीं होता, और जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वो लोग किसी को भी भक्त नहीं मानते अपने सिवा, और भगवान का जो है भगवान से संबंध या गुरु से संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा किसी और से नहीं। तो ये शुरुआत रहती है कनिष्ठा की, यहां से आगे बढ़ता है व्यक्ति। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि हम आपको अपने गुरु मानते हैं, अपना अध्यक्ष स्वीकार करते हैं, जिससे तुम्हारे तपोबल से हम अपने उन शत्रुओं को जिन्होंने हमें परास्त किया है सरलता से जीत सके। ये जीत और हार का मैच चल रहा है ऊपर, और यह हर जगह रहता है, देवताओं के लोग भी इससे वंचित नहीं। हर जगह अब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तन अर्जुन, हे अर्जुन, पाताल से लेकर सबसे ऊंचे लोक सत्य लोक वहां तक टेंशन है, वहां पर भी जन्म है मृत्यु है, स्वर्ग में अलग प्रकार की टेंशन है, हमारे यहां पर अलग प्रकार की समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं, खाने पीने की कंफर्ट्स की समस्याएं, राजनीति की समस्याएं, क्रिकेट मैच की समस्याएं लोगों को, लेकिन ऊपर अलग समस्याएं हैं, वहां पर जितने देवता हैं और उतने असुर भी हैं वहां पर, और आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, तो इसलिए वहां पर भी समस्याएं रहती हैं। लेकिन जो लोग शुद्ध भक्ति का पालन कर रहे हैं उनके लिए, चाहे ब्रह्मा जी का लोक हो, फिर चाहे पाताल हो या फिर नर्क हो, उनके लिए बाहरी वातावरण कोई मायने नहीं रखता, वो हर सिचुएशन के लिए संभव है। तो ऐसी अवस्था में आने से व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, मानसिक या शारीरिक या किसी भी तरह का। और जब तक हम उस धरातल पर नहीं है तब तक हम लोगों को सारे प्रकार के कष्ट होंगे। जो ठीक प्रकार से प्रगति कर रहे हैं, कष्टों की जो तीव्रता है या उसका जो लगना है हमको, जो कष्ट होते हैं उसकी कम हो जाएगी, वो उसका इफेक्ट कम हो सकता है। जिस प्रकार जब वाहन से हम चलते हैं, सड़क अगर खराब है तो साइकिल पे या ऑटो पे चलते तो बहुत उछलता है वो, है ना, एक एक खड्डा जो है भगवान का या किसी और चीज का नाम मुंह से अपना निकलता है लोगों के। लेकिन अगर उसी रास्ते पे अगर हम सही प्रकार के वाहन पर चल रहे हैं जिसके शॉकर ज्यादा मजबूत हैं, है ना, तो उसमें उन गड्ढों को हम लोग उतना अधिक महसूस नहीं कर पाते। तो जो लोग अभी उस प्रकार के वाहन पर हैं जिसमें कि शॉकर ही नहीं है, तो उनको हर वो छोटा प्रॉब्लम या छोटा खड्डा, जो छोटा सा खड्डा जोर का लगेगा, है ना। और जो लोग अच्छे वाहन पर हैं, अच्छी साधना कर रहे हैं, मंगला आरती, जप, भागवत कथा, भक्तों का संग, डीटी वर्शिप ठीक प्रकार से कर रहे हैं, तो वो समझ लीजिए बहुत अच्छे वाहन पर हैं, जिसमें कि शॉकर मजबूत हैं और उनसे छोटे छोटे खड्डे हों, जब बड़े खड्डे पे उनको बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता, बहुत बड़ा बड़ा खड्डा आ जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। और शुद्ध भक्त जो है वो उसी रोड के ऊपर जो है एयर से चल रहे हैं, एयर से चल रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है सड़क के खड्डों से, है ना जी, तो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये शुद्ध भक्ति का धरातल है, और साधकों का भी धरातल बता दिया। और जो मटीरियली एनग्रॉस्ड हैं, बहुत ज्यादा संसार से बंधे हुए हैं, हर छोटी छोटी चीज से आ सकता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, मेरी बात मानी जाए, ऐसा हो, वो हर क्षण उस सड़क के खड्डों से विचलित रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो जब हम लोग इस प्रकार शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, गुरु के आदर्शों का पालन करेंगे, तो उनके तपोबल से हमें शक्ति प्राप्त होगी, और फिर कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना हो वो संभव होगा, आसान हो जाएगा। और कई बार तो ऐसा नहीं कि कृपा का मतलब यही होता है कि हमको हमेशा विजय प्राप्त होगी, नहीं, कृपा का मतलब ये नहीं कि बस जिस चीज में मैं हाथ डालूं, क्योंकि मैंने कल से माला शुरू कर दी, चार नियम पालन कर दिया, अब तो मैं जिस भी बिजनेस में हाथ डालूं, क्योंकि प्रमाणिक गुरु से भी जुड़ गया, वो बस होना चाहिए, जाके लॉटरी खरीद लाए, है ना। कहने का मतलब है कि कई बार अगर हार भी होगी तो उसमें भगवान की कुछ ऐसी योजना होगी जिससे कि हमारे अंदर कुछ और अच्छे गुण आए, हमारे पेशेंस लिमिट और बढ़े, हम और विनम्र बने और हम्बल बने। तो विजय का मतलब जरूरी नहीं है कि किसी सिचुएशन पर विजय पाना, विजय का मतलब है कि उन सब कार्यों से, उस डिवोशनल सर्विस से हमारी चेतना का स्तर ऊपर उठे, या जो गुण बताए जाते हैं भक्तों के उन गुणों की संख्या में वृद्धि हो। समझे? तो इस प्रकार हमारी जो है, जब इस तरह के गुण हमारे अंदर आएंगे तो ये विजय है, असली विजय ये है। कई बार हो सकता है कोई व्यक्ति हार कर भी या विफल होकर भी वो प्राप्त कर ले जो दूसरा व्यक्ति जीत कर ना कर सके। एग्जाम्पल, बलि, छोटे से एग्जाम्पल सुनते ना। कई बार मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पुस्तकों के वितरण में क्या किया, बहुत अधिक पुस्तक बांट दी, कम समय में ज्यादा पुस्तक, लेकिन जो पुस्तक बांटी उसमें हो सकता है उसने कई लोगों को जबरदस्ती कर उन्हें हमेशा के लिए रूठ गए, ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु जी नहीं हमारे पास तो थी, आप ऐसे मत कीजिए प्लीज, मुझे नहीं चाहिए, मैंने बोल दिया ना, नहीं 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 आपको तो लेना पड़ेगा, आज तो ये है और आज तो वो है, नहीं नहीं मेरे पास पैसे नहीं प्रभु जी, ये जो पैसे पड़े मुझे कहीं जा रहा हूं बच्चे की फीस जमा, अरे प्रभु जी बच्चे की फीस तो फिर भी जमा हो जाएगी, ये पैसे इधर लाइए, क्या दिक्कत है, ये डब्बा लेकर जाइए। समझ पा रहे हैं? तो विजय हुई, एक डब्बा प्राप्त कर लिया, एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक डब्बा एक अच्छी मात्रा में कर दिया, लेकिन वास्तव में हार किस रूप में हुई कि हम लोगों ने एक भक्त को, या जो क्योंकि जो भक्त अभी नहीं है वो कल को तो भक्त होगा ही होगा ना, ये जो किताबें जो अब ये सब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो जा ही रही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कोई कभी ना कभी पढ़ेंगे, है ना जी, हरिनाम हो रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है, सब लोग भक्त बनेंगे बनेंगे, एक नहीं आने वाले समय वैष्णव बनेंगे सब लोग। तो एक वैष्णव नाराज हो गया, तो सिचुएशन देख सकते हैं कि व्यक्ति ने गीता इतना निकाल दी हो सकता है, बट भक्त खो दिया कुछ समय के लिए, जब तक भी है नाराज हो गए। और दूसरी तरफ हो सकता है किसी व्यक्ति ने कर स्कोर कम हो, लेकिन उसे दो या तीन जितने भी करी उसके अच्छे स्वभाव को देखकर, उसकी अच्छी बात को सुनकर व्यक्ति ने उसी दिन से घर में जाकर भगवद गीता पढ़नी शुरू कर दी, और उसके बाद मंदिर आकर उसने और सेवाएं करना शुरू कर दी। तो ये विजय है सिचुएशन, जब बुलाया जाएगा स्टेज पर तो जिसने डब्बा दिया था या ज्यादा गीता की थी तो हो सकता है उसको नंबर 1 का प्राइज मिले, खिताब मिले, और जिसने नहीं किया था बेचारा सबसे आखिरी में लाइन में खड़ा है, छोटी सी ट्रॉफी मिली, ताली बजी निकल गया, लेकिन उसके द्वारा किया गया हो सकता है देखने में लगे कि इसने कुछ ज्यादा नहीं किया लेकिन बहुत अच्छा कर दिखाया उसने। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि जिसने, लेकिन अगर जिसने जो ज्यादा संख्या में की है अगर वो हर चीज को बहुत सुंदर चेतना में कर रहा है तो फिर ये विजय है, ये उसकी और कृपा है, उसका नाम और अधिक बढ़ेगा, उसको और सम्मान मिलेगा। लेकिन इन सब चीजों के मिलने से अगर वो भक्त स्टिल अभी भी अपने को यही चाहता है कि मैं करता नहीं, आई एम नॉट द डूअर, करने वाले कौन है, कृष्ण है, सारा क्रेडिट किसको देता है, वो गुरु को और कृष्ण को देता है, कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो बस वहां ऐसे जा रहा था तो उसने बुला लिया, उसने कहा जितनी गीता दी तो उसने कहा ऐसे कर दो, इस प्रकार उसने बहुत अच्छे अच्छे काम कर प्रचार करने गया, अचानक ही कुछ लोग ऐसे मिल गए कि जिन्होंने उनके प्रचार में खूब मदद करी और बहुत बड़ा अच्छा कार्य हो गया। तो फिर भक्त लोग जानते हैं कि इसका क्रेडिट अगर मैं लूंगा तो उसके वेट से मैं फंस जाऊंगा। अगर हम लोग किसी भी कार्य का क्रेडिट ले रहे हैं या किसी भी चीज में मान सम्मान चाह रहे हैं या इच्छाएं रख रहे हैं अभी भी, तो हो सकता है वो काम हो जाएंगे लेकिन उसकी वजह से हमारे ऊपर बढ़ने वाला जो वेट है, भार है, वो हमें लेट डूबेगा। जैसे आप लिफ्ट पे चढ़ते हैं, ओवर वेट हो जाए तो लिफ्ट जाती नहीं ऊपर, या आप नाव में बैठे जैसे से आया पीछे एग्जांपल कि पत्थर के नाव में बैठे हैं, अगर आप पानी में ले गए आप किसी तरह तो क्या होगा, डूब जाए। उसी प्रकार इतने सारे अनर्थों को अगर हम कल्टीवेट करेंगे, अपनी डिवोशनल सर्विस को करते हुए, तो इन अनर्थों की वजह से क्या होगा, हम लोग प्रगति करने की जगह नीचे भी जा सकते हैं। तो आज के श्लोक से हम ये समझने का प्रयास करें कि हम लोगों को किसी भी हालत में प्रयास करना चाहिए कि दृढ़ता से गुरु के आदेशों का पालन करें और जो गुरु के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस हैं उनका अक्षरज पालन करें और दृढ़ता के साथ पालन करें, और जो भी उसमें सफलता मिले या उस कार्य में असफलता भी मिले, असफलता से विचलित ना हो, सफलता का क्रेडिट गुरु को दें। इस प्रकार भक्त लोग आगे बढ़ सकते। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न है, जिज्ञासा है? ग्रंथ राशि में भागवतम की टैगोर पे मानेंगे।